ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से छठा स्कंद अध्याय 9। इस अध्याय का नाम है वृत्रासुर का जन्म या आविर्भाव, और श्लोक 28 से 30 तक। बोर्ड पर श्लोक संख्या 30 लिखा हुआ है, इसका पुनरावृत्ति करेंगे। दृष्टवा, हिंदी किताब कहां है, तम अवनौ सर्वे इक्षण अहलाद विक्लवः दंडवत् पतितः राजन् सनै उत्थाय तुष्टो तुष्टौ दृष्ट्वा तं वनौ सर्व इक्षणालाद विक्लवा इक्षणालाद विक्लवा दंडवत्पतिता राजन् शनै उत्थाय तुष्टौ दृष्ट्वा तमनौ सर्व इक्षणा आह्लाद विक्लवा दंडवत्पतिता राजन् शनै उत्थाय तुष्टौ दृष्ट्वा तं वनौ सर्व इक्षणा आह्लाद विक्लवा दंडवत्पतिता राजन् शनैरुत्थाय तुष्टौ। माताजी दृष्टवा देखकर तम भगवान को अवनौ पृथ्वी पर सर्वे सब के सब इक्षणा उनके सामने आह्लाद आनंद से विक्लव विह्वल होकर दंडवत दंड के समान पतिता गिर पड़े राजन हे महाराज परीक्षित सनई धीरे धीरे उत्थाय उठकर तुष्टुभो उनके संतुष्टि के लिए उनके प्रसन्नता के लिए प्रार्थना किए। तो मैं ये तीनों श्लोक इसके पहले वाला जो श्लोक है आत्मतुल्य षोडश भी बिना वस श्रीवत्स कौस्तुभ परुपासितम उन्निद्रह दसंबर उरेक्षणम इसके बाद में यह श्लोक है। अनुवाद इस प्रकार से है श्री भगवान को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे और भगवान के ही समान लग रहे थे, किंतु श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तु मणि से रहित थे। हे राजन, जब देवताओं ने उस मुद्रा में सत्कालीन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मित हास से युक्त श्री भगवान को देखा तो प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुति द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। तात्पर्य, वैकुंठ लोक में श्री भगवान चार भुजाओं से युक्त तथा वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह एवं कौस्तुभमणि धारण करते हैं। ये श्री भगवान के विशिष्ट चिन्ह हैं। वैकुंठ लोक में उनके पार्षद तथा भक्तों के भी उन्हीं के समान स्वरूप होते हैं। उनके केवल श्रीवस्त्र कौस्तुभमणि नहीं होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्जनिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पहले का जो श्लोक है श्लोक 128 उसको पढ़ता हूं। श्री शुक उवाच इति तेषां महाराज सुराणां उपतिष्ठितां प्रतीक्षां दिशि अभूतः आविः शंख चक्र गदाधर। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, थोड़ा साउंड कम करो, तो श्री भगवान हरि शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए शंख चक्र पद्म तथा गदा धारण किए हुए पहले उनके अंतःकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। तो ये कथा हम लोग सुनते आ रहे हैं। कि किस प्रकार से इंद्र विश्व रूप से नारायण कवच प्राप्त किए थे और बाद में विश्व रूप का वध भी कर दिए थे। त्वष्टा ऋषि गुस्से में आकर के यज्ञ किए, हालांकि यज्ञ तो था कि कोई इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, लेकिन वह इंद्र का शत्रु नहीं हुआ बल्कि इंद्र उनके शत्रु हुए। लेकिन फिर भी यह यज्ञ हुआ था कि कोई उत्पन्न हो, उनकी मनसा तो थी कि इंद्र का शत्रु हो जो इंद्र को मारे, इंद्र को मारने वाला शत्रु, इंद्र शत्रु हो, इंद्र को मारने वाला शत्रु। तो शत्रु था लेकिन मारे या न मारे दूसरा बात है, मारे या मरे ये दूसरा बात है, लेकिन शत्रु था। तो जब देवता लोग देखे उसके आकार विकार आचार को, चाल चलन को, तो बड़े घबराए और अपने सब अस्त्र शस्त्र से उस पर प्रहार किए। लेकिन सबके देखते देखते उनका अस्त्र शस्त्र पकड़ करके और निकल गया, नियत्थे हो गए सब देवता लोग, बड़े भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं, ततः ते विस्मिता सर्वे विष्णाम ग्रस्त चेतस प्रत्यंचम आदि पुरुषम उपत्थस्तु महा समाहिता। इस प्रकार से देवतागण यह देख कर करके बड़े विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हो गए और साथ साथ वे लोग दुखी भी हुए कि उनके पास अब कुछ नहीं रह गया था, सब अस्त्र शस्त्र खो डाले थे। जब कुछ भी नहीं था, स्वाभाविक है जब कुछ नहीं होता है सब जगह से आशा टूट जाती है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाजा खुलता है। सब लोग भगवान के पास लास्ट में जाते हैं, सब नहीं, बुद्धिमान लोग तुरंत चले जाते हैं, बुद्धिमान लोग कुछ भी हो भगवान के पास चले जाते हैं तुरंत। लेकिन जो अपने शक्ति से अहंकारिक होते हैं, उन्हें शक्ति पर बड़ा गर्व होता है, वे लोग नहीं जाते हैं तुरंत। कुछ उच्च कोटि के भक्त लोग भी भगवान के पास तुरंत नहीं जाते हैं, चाहते हैं कि भगवान को तकलीफ क्यों दें, पहले स्वयं शॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो तुरंत भगवान के पास नहीं गई, वो भी पहले अपना प्रयास की, सब लोगों से पहले उन्होंने विनय की, कोई रक्षा नहीं कर पाया तो उसके पास जो अपना शक्ति था, अपने शक्ति से रक्षा कर रही थी अपना, जब कोई शक्ति नहीं काम आया तो भगवान के शरण में गई। वैसे ही गजेंद्र जितने भक्त हैं, तो जो भी भगवान के शरण में जाए, चाहे किसी भी प्रकार से जाए, भगवान गीता में कहते हैं वो सुकृति व्यक्ति है। चतुर्विदा भजन्ति माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तृसव। जो भगवान के पास जाते हैं सुकृत हैं। तो देवता लोग तो स्वाभाविक है कि सूर हैं, सुकृत हैं, सत्गुणी हैं, तो ये लोग भगवान के शरण में गए। मैं श्लोक संख्या 20 इसलिए कहा कि यहां पर एक शब्द आया हुआ है और वही शब्द श्लोक 28 में आया हुआ है प्रतंचम, और वही शब्द यहां पर आया हुआ है श्लोक संख्या 28 में, जहां पर सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं। इति तेषा महाराजम सुराणाम उपतिष्ठिताम प्रतिच्याम दिशा प्रतिच्याम दिशि अभूत आवि शंख चक्र गदाधर प्रतिच्याम, और वहां पर भी आया हुआ है प्रतिच्यम। तो ऐसे अनुवाद किया गया है इसका, हृदय में भगवान आए। लेकिन वर्ड जो प्रतीच होता है, प्रतीच का मतलब पश्चिम दिशा, पूरब के लिए प्राची कहते हैं ना, प्राची दिशा को पूरब कहा जाता है और प्रतीच पश्चिम को कहा जाता है। कैसे इसका संबंध है हृदय से। यहां पर अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी सेड, माय डियर किंग, व्हेन ऑल द डेमिगॉड ऑफर हिम देयर प्रेयर, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड हरि, कैरिंग हिज वेपन्स, द काउंसिल, डिश एंड क्लब, अपियर फर्स्ट विद इन देयर हार्ट एंड देन बिफोर देम। उनके हृदय में शब्दार्थ देखा जाए प्रतीचि मतलब पश्चिम दिशा। हार्ट से पश्चिम दिशा से क्या लेना देना है इसका समन्वय मैं बताऊंगा। देखिए ये जो क्रम है, ये तीन श्लोक का क्रम है। सुखदेव गोस्वामी इन तीनों श्लोकों को, हालांकि सब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा ब्रेक दिया गया है। श्लोक संख्या 27 तक कहे, उसके बाद पुनः 28 में कहा गया है श्री सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। ये तीन श्लोकों में बताया गया है कि जो देवता लोग स्तुति किए थे भगवान के प्रसन्नता के लिए, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसको सूचित करता है यहां पर सुक उवाच। दूसरा शब्द है यहां पर आए इति तेसा महाराज, भगवान का गुणगान करने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इसलिए भक्त स्वरूप जो महाराज परीक्षित हैं, जो महाराज परीक्षित हैं उनके भगवत भगवान के स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं, भगवान के कृपा का वर्णन करने जा रहे हैं, इसलिए उनको सावधान कर रहे हैं। हे महाराज अब सुनिए सावधानी से मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो दो कारणों से यहां पर श्री सुक उवाच कहा गया है। एक कारण यह है कि वे जो देवतागण प्रार्थना किए थे, भगवान के शरण में जाकर कोई प्रार्थना करे चाहे किसी भी भाव से जाए निष्फल नहीं होता है। भगवान भाव कुभाव कैसे भी कोई जाए, भगवान देखते हैं मेरे पास आया है, बस कोई आता है किसी भाव से। पुतना के पास भाव था कि वह कृष्ण को मारेगी, और वहीं विदुरानी और के पास भाव था कि वह कृष्ण को कुछ खिलाएगी। दोनों का भाव था, लेकिन भगवान दोनों का सेवा स्वीकार किए और दोनों को फल भी दिए उनके अनुसार। तो किसी भाव से कोई भगवान के पास जाए, भगवान जरूर उसका इच्छा पूरा करते हैं। कामो सर्व कामो वा मुख्य काम उदारधि तिब्रेण भक्ति जोगे न रजेत पुरुष परम। किसी भाव से कोई भगवान के पास जाए, भगवान उनके इच्छाओं को पूरा करेंगे। देवता लोग यहां पर भगवान से प्रार्थना किए हैं और उनके स्तुति का फल अब प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि मैं कहा प्रतीचि का बात करूंगा, मतलब पश्चिम दिशा। जो पश्चिम दिशा है वो भगवान विष्णु का दिशा है, वो उनका निवास स्थान है। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं अपने शरीर में। राधिका कन्हैया आपके शरीर में पश्चिम किधर है? खड़ा हो जाओ, सबको बताओ, खड़ा हो जाओ, लंबा है सब देख देंगे। पश्चिम दिशा तुम्हारे शरीर में कहां है? नहीं, सामने पीछे सामने से करो, सामने सामने भी कुछ होगा ना, ये लेफ्ट राइट है ना, इसमें भी कुछ होगा ना। हाँ, कौन बोला? बैठो, उत्तर बता दिया। सिर जो है वह उत्तर साइड है, पैर जो है दक्षिण साइड है, जो राइट हैंड है वो पूरब साइड है, और जो लेफ्ट हैंड है वो पश्चिम साइड है। तो यहां पर आया हुआ है प्रातिच्याम, पश्चिम दिशा में भगवान आए। तो लेफ्ट हैंड जो है वो पश्चिम दिशा है, और हमारे शरीर में हार्ट कहां होता है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, इसलिए भगवान कहां रहते हैं? पश्चिम में। मंदिर बनता है तो मंदिर में भगवान किधर आते हैं? हमें अपना तो खैर उत्तर दिशा में फेस कर रहा है, लेकिन प्राय लोग कहते हैं वस्तु शास्त्र के अनुसार कि पूर्व ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग का मतलब क्या हुआ? भगवान कहां है? पश्चिम दिशा में। तो जहां नारायण है, जहां विष्णु है, वहीं पर लक्ष्मी जी निवास करती है। बंबई कहां है भारत में? पश्चिम दिशा में है ना, कहते हैं लक्ष्मी जी यहां पर आती है, ये लक्ष्मी का नगरी है। हमारे भगत लोग तो बॉम्बे से बने खुश होते हैं, वो पाश्चात्य जगत जाना चाहते हैं, पश्चिम दिशा, अमेरिका इत्यादि, वो भी पश्चिम दिशा है, ज्यादा पैसा है ना उधर। भगवान खोजने कहां जाते हैं? पश्चिम दिशा। कोई हम ऐसे ही बैठ रहे थे, कल बात कर रहे थे, तो एक हमारे मेंबर की एक लड़की थी, कही कि प्रभु जी बॉम्बे में भी देखिए तो जितना भी वेस्ट है, बॉम्बे वेस्ट सब संपन्न है, अंधेरी वेस्ट है, जो भी वेस्ट साइड है, इस साइड में कुछ नहीं है ज्यादा। अब धीरे धीरे आने लगा रही, पहले वेस्ट साइड पूरा संपन्न था, समुद्र के किनारे, चाहे मालवार हिल से ले लो और कांदीवन तक सब वेस्ट है। बिले पार्ला वेस्ट, जो स्कीम बिले पार्ला वेस्ट में है, बांद्रा वेस्ट, बांद्रा ईस्ट में क्या था? कुछ था, झोपड़पट्टी था, बांद्रा वेस्ट में सब फिल्म स्टार लोग रहते थे। तो वेस्ट साइड जो है बड़ा संपन्न साइड होता है वस्तु शास्त्र के अनुसार, वो भगवान का निवास स्थान है, भगवान वहां निवास करते हैं। तो यहां दोनों श्लोक में आया हुआ है प्रातिच्याम, देवता लोग पश्चिम दिशा यानी दिल में भगवान जो स्थित हैं परमात्मा, उनको प्रणाम करने लगे, उनके प्रति स्तुति करने लगे। और यहां पर भी आया हुआ है प्रतिच्याम दिशा, प्रतिच्याम दिशा, दिशा मतलब दिशा, पश्चिम दिशा में यानी अंतःकरण में भगवान पहले आविर्भूत हुए और बाद में बाहर प्रकट हुए। वैसे ही ध्रुव महाराज के लिए भी भगवान पहले उनके हृदय में प्रकट हुए, बाद में बाहर आए। तो यहां पर भगवान आए हैं तो भगवान अकेले नहीं रहते हैं। भगवान आए शंख चक्र गदा पद्म धारण कर करके आए हैं, सब कुछ साथ लेकर के आए हैं, देवताओं की रक्षा का बात था भगवान। हालांकि ये सब शंख चक्र गदा पद्म हमेशा साथ में ही रहते हैं, भगवान नारायण के साथ रहते हैं। जो सो काल भगवान बनना चाहता है उसके पास तो नहीं रहता है, तो बनवा लेता है, आप लोग जानते हैं ना, वो पौंड्र कृष्ण वासुदेव कथा है, उसके पास शंख चक्र गदा पद्म नहीं था, तो उसने बनवा लिया दो और हाथ। सुनाता है कि विष्णु के चार हाथ होते हैं, तो दो और हाथ बनवा लिया, असंख्य चक्र गदा पद्म धारण किया और भगवान से चैलेंज किया कि तू हमारा शंख चक्र गदा ले लिया है, तू ला करके लौटा दो। तो भगवान कहे ठीक है भाई, दे दूंगा तुमको। तो भगवान आए तो कहे पहले क्या तुम लेगा? भगवान कहे चलो चक्र को ही। सभी आयुधों में चक्र बहुत फास्ट चलता है, अग्नि से, अग्नि का स्वरूप है चक्र। गदा में भार है, जिसमें भार कम होता है वो फास्ट चलता है, जब खाली ट्रक होगा बड़ 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 चला जाएगा, और जब लोडेड ट्रक होगा चू चू करते हुए चलेगा, है ना हनुमान, देखा है ना हाईवे पर जब चढ़ाई होता है तो ये चक्र खाली धूम पहुंच जाए कहीं पर भी, लेकिन गदा में थोड़ा देर लगता है। चक्र तो कभी कभी भगवान से बिना पूछे पहुंच जाता है, जैसे दुर्वासा जी के लिए पहुंच गया। एनीवे, तो भगवान का चक्र पहले कहा कि प्रभु हमको ये सेवा करने का अवसर दीजिए, तो चक्र पहले पहुंच गया और पौंड्र कृष्ण वासुदेव का दोनों हाथ काट दिया, जो असली हाथ था, अब नकली हाथ बच गया। तब गदा जी कहे कि अब मैं सेवा करूंगा, और गदा गए और उनका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिए, हो गया काम तमाम हो गया। तो ऐसे नकली लोग हैं जो नकली चीज, आई मीन ये द्वापर युग का बात है, कलयुग में तो सब नकली ही हैं, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल। स्माइल भी आजकल का आर्टिफिशियल है, वो भी नकली स्माइल है, असली स्माइल नहीं है ना, हंसी नहीं है किसी के पास, है ना राधास, देखो हंस दिया राधास, ये असली स्माइल है, हंसी नहीं है, सब कुछ कॉस्मेटिक हो गया, सब कुछ बनावटी पना हो गया है, खान पान रहन सहन सब, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त लोग नेचुरल हैं, उनके पास कुछ भी बनावटी पना नहीं है, वास्तविकता है। और जो व्यक्ति वास्तविकता में विश्वास करता है, वास्तविकता को स्वीकार करता है, वो हमेशा सुखी रहता है। तो भगवान इस शंख चक्र गदा पद्म धारण कर कर करके देवताओं के पहले हृदय में आए और उसके बाद वे बाहर आए। हाँ, पहले उनके अंतःकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए भगवान। अब देवता लोग यहां पर भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे और कुछ धारण किए थे और उनके साथ थे आत्मतुल्य षोडश भी बिना श्रीवत्स कौस्तु हो, उनके साथ में उनके 16 पार्षद लोग आ गए थे, 16 पार्षद के साथ भगवान आए थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे यहां कोई राजा होता है तो अकेला नहीं चलता है, उसके साथ में उसके परिषद होते हैं, मंत्री होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, अकेला चलना अच्छा नहीं लगता है, आधी रात हो अकेले जाए तो डर जाए, कोई भी आ जाएगा तुम ये हो जाएगा, दो चार लोग साथ में रहते हैं तो वैसे अकेला नहीं चलना चाहिए, चाहे लाइफ मर्सी प्रीचर लोग हो चाहे कोई हो। कितने प्रीचर लोग हैं क्लास में डायरेक्टर साहब? जय श्री गौर नेता है राधा राष्ट्र बिहार स्थान। डायरेक्टर साहब कितने प्रीचर लोग हैं? अरे प्रीचिंग तो यही करना है ना, प्रीचरों को अकेले नहीं जाना चाहिए, माया बड़ी बलवती है, इसलिए दो का टोली, प्रभुपाद जी कहे कि दो का टोली बनाकर जाना चाहिए, दो लोग जाएं कम से कम मिनिमम। वैसे ही कांग्रीगेशन प्रीचिंग वाले भी अकेले ना जाएं, दो चार पांच लोगों को साथ में लेकर जाएं, तो कम से कम दो जाना चाहिए, अकेले मत जाओ, माया बड़ी बलवती है। भगवान पर माया तो नहीं लगने वाली थी, इसलिए भगवान के साथ में वो आए, ऐसे इसलिए नहीं आए, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते हैं, कभी उनके साथ में गाय रहती है, कभी पशु पक्षियां रहती हैं, और कोई तो बांसुरी है ही साथ में, गोपीजन वल्लभ है भगवान है। उनके साथ में कोई ना कोई रहता है। तो भगवान यहां पर आए अपने 16 पार्षदों के साथ में, 16 भगवान के पार्षदों का नाम यहां पर बताया गया है। ये सब लगता है द्वारपाल लोग आ गए थे वहां से भगवान के साथ में। 8 दरवाजे हैं ना, और एक दरवाजे पर दो द्वारपाल, 16 दरवाजे। उनके नाम इस प्रकार से है, नंद सुनंद प्रबल बल जय विजय विश्वक्सेन गरुण श्रुतदेव जयंत कुमुद कुमुदाक्ष निषठ सात्वत पुष्पंद आरुख। इस प्रकार से 16 द्वारपाल हैं, 16 पार्षद हैं भगवान के साथ में, कभी दो जाते हैं, कभी चार जाते हैं, कभी इस बार 16 आए हैं। अब भगवान जा रहे थे तो उनके साथ में ये लोग भी थे, तो इनका कपड़ा लता भी अच्छा था भगवान के समान, है ना, कभी जाना होता है तो ये नहीं कि अपना कपड़ा अच्छा असिस्टेंट कपड़ा खराब हो, अरे बस वो कपड़ा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कम से कम जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं सोसाइटी को, थोड़ा अच्छा कपड़ा होना चाहिए। तो वैसे ही भगवान के जो पार्षद हैं ये भी ठीक उनके ही समान रूप धारण करते हैं, वे लोग सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए, उन्हें सारूप्य भगवान के रूप के समान उनका भी रूप देखने में ठीक भगवान के समान लगते हैं। उनके वे चतुर्भुजम है, पीताम्बर धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करते हैं। प्रश्न उठता है कि भगवान में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। सुखदेव गोस्वामी यहां पर भगवान के भगवत्ता का प्रतिपादन किए हैं, भगवत स्वरूप का प्रतिपादन किए हैं। जैसे जो लोग भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, कुछ तो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, कुछ कहते हैं भगवान निराकार हैं, कुछ कहते हैं भगवान हम सब भगवान हैं, सब एक समान। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का थ्योरी स्थापित कर दिए हैं, लेकिन भक्त लोग बिल्कुल क्लियर करते हैं कि भगवान कौन है। मंत्रिमंडल में सब मंत्री हैं, लेकिन सब अलग अलग मंत्री हैं, और उन मंत्रियों में एक प्रधानमंत्री है। तो ठीक वैसे ही ये सब वैकुंठवासी हैं, वैकुंठ लोक के निवासी हैं। इन लोगों का रहन सहन सब कुछ ठीक उसी प्रकार से है जैसे वैकुंठ पति नारायण का है। तो ये लोग भगवान के समान थे, आत्मतुल्लई, सोच विचार भी भगवान के समान था। षोडश भी 16 लोग थे, लेकिन बिना श्रीवस्त्र कौस्तुभ, भगवान के समान ही ये सब कुछ धारण करते हैं, लेकिन इनमें और भगवान में अंतर होता है कि भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह होता है और कौस्तुभ मणि का माला भगवान धारण करते हैं। इस श्रीवस्त्र शब्द क्या है, मैं पहले बताया था, श्री जस्य वस्ता इसी श्रीवस्त्र। भृगु मुनि का नाम आप लोग जानते हैं। भृगु मुनि एक बार गए थे पता लगाने के लिए कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, महेश और विष्णु। तो इन लोगों का पता लगाने भगवान भृगु मुनि गए थे। तो आप लोग जानते हैं कथा को क्या हुआ था, और अंत में पहुंच गए थे वे नारायण के पास और उनके वक्षस्थल पर अपना पैर रखे। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान से कह रहे आप अतिथि आए, आपका सत्कार हम नहीं कर पाए, क्षमा करेंगे, लेकिन इस गलती के सुधार के लिए आपके चरण पद का जो चिन्ह है, चरण चिन्ह है, वो सदा मैं धारण करूंगा। तो वही भृगु मुनि का चरण चिन्ह है वो भगवान के हृदय पर है। भृगु मुनि की एक पुत्री थी जिसका नाम था श्री, श्री जस्य वत्सा इति श्रीवत्स, इसलिए उन्हें श्रीवत्स कहा गया है। और कौस्तुभ मणि, ये दो चीज है जो कि भगवान को अन्यों से अलग करता है, भगवान को और अन्यों में भेद दिलाता है। ऐसे कई एक चीज है, तो बाह्य चीज है, लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान यदि वामन के रूप में क्या कच्छप के रूप में आए, भगवान कछुआ के रूप में आए थे, तो वहां पर न तो चतुर्भुज धारण हाथ था, न ये क्या नाम से मत्स्य अवतार के रूप में आए थे, उनके पास श्रीवत्स कौस्तुभ कुछ भी नहीं था, लेकिन भक्त लोग पहचाने, उनका प्रार्थना किए। भगवान किसी भी रूप में आए भक्त लोग जानते हैं। भगवान कहते हैं भक्त्यामाम अभिजानाति जावन जस अस्मि तत्त्वतः, जैसा मैं हूं यदि कोई जान सकता है मुझे यथावत, तो वह है भक्ति। भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता हूं, और भक्तों के पास भक्ति है, इसलिए वे पहचान जाते हैं। तो ये तो बाह्य पहनावा है इसमें ये लोग थे। अब जब भगवान को आया हुआ देखे ये लोग, भगवान के सौंदर्य का यहां पर वर्णन किया गया है। परियुपासितम, भगवान सब जगह से उपासित थे, यानी सेवित थे। ये सेवक लोग सेवा करने के लिए आए थे। जैसे गरुड़ जी जाते हैं तो उनके पंख में ही वेद के मंत्र हैं, जैसे जैसे पंख उड़ता है तो वेद की ऋचाओं का उच्चारण होता है। भगवान का सेवा इन वेद के ऋचाओं से भी हो सकता है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने की क्रिया को भक्ति करते हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जिह्वा है, जिह्वा का काम है प्रसाद ग्रहण करना और उच्चारण करना। तो जिह्वा से यदि हम उच्चारण करें, हरि कथा कहें या हरि कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये अभी भगवान का सेवा है नाम के द्वारा। जो भगवान गुणगान करे, प्रचार करें, वो भी सेवा है। तो इस प्रकार से जितने सेवक लोग थे सब भगवान के सेवा में लगे हुए थे। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है, रसोईया अपना लेकर जाता है और सेक्रेटरी लेकर जाता है, तो भगवान सब व्यवस्था कर आए थे। ऐसा बात नहीं था कि देवलोक में भगवान का खातिर वातिर नहीं होता, लेकिन फिर भी सबको लेकर के आए थे। या भगवान आ रहे थे तरफ से हम भी चलते हैं, स्वर्ग लोग थोड़ा देख करके घूम करके आते हैं, आ गए थे। पर्युपाशत 19 शरद अम्बुरुह इक्षणम। राधा कृष्ण प्रभु आपके बगल में कोई रात पर पहरा दिए हैं, जगा दो। हाँ जगा दो, जगा दो, नींद आ जाती है। वो कुंभकर्ण का आशीर्वाद, कुंभकर्ण के लिए आशीर्वाद है, निद्रा को आशीर्वाद है। एनीवे, तो यहां पर भगवान का उपासना करते, भगवान का सेवा करते हुए सेवक लोग साथ में थे, भगवान का सेवा कर रहे थे। और भगवान के यहां पर आंखों का व्रण किया गया है, इक्षणम, भगवान के नेत्र का। शरीर में आंख नाक ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है। आंख से सब बहुत कुछ हो सकता है। आंख से भगवान किसी को भस्म कर सकते हैं, आंख से भगवान किसी को प्यार दे सकते हैं, आंख से भगवान किसी के दिल का चोरी कर सकते हैं चित चोर के रूप में, आंख से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भागवतम के दशम स्कंद में भगवान के आंख का अंबुज क्षण, अंबुजा जस्य इक्षण, अंबुजा अंबु मतलब समुद्र, ज मतलब जन्मा हुआ, जो समुद्र से जन्मी है यानी लक्ष्मी देवी जिनके आंख में निवास करती हैं, वे हैं नारायण, वे हैं भगवान अंबुज क्षण, उनका आंख जो है। इसलिए दर्शन करने आते हैं यहां पर तो भगवान की दृष्टि पड़ती है। अरे हम लोग क्या भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अतः कृष्णामादि न भविद ग्राह्यम इंद्रिय, अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते हैं, इस आंख में वो शक्ति नहीं है। देखेंगे हाँ पुजारी लोग अच्छा श्रृंगार किए हैं, इतना ही देख लेंगे, लाइट ठीक है, सभी ठीक है, लेकिन भाव क्या है ये तो शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। लेकिन एक बात है कि भगवान के सामने यदि हम आ जाएं, मंगला आरती श्रृंगार दर्शन या कैसे भी भगवान के सामने हम आ जाएं, तो हम लोग कल्याण जरूर होगा, क्योंकि भगवान अंबुज क्षण है, भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है। अंबुज क्षण का मतलब, एक बार गोकुलेश्वर हियर, गोकुलेश्वर ने प्रश्न किया, मैं शायद यही बोला था जन्माष्टमी के समय अंबुज क्षण का व्याख्या कर रहा था, मैया कि समुद्र से जो भी निकला था भगवान के आंख में है। तो कहा कि विष भी है क्या? मैं बिल्कुल है, जब भगवान गुस्सा करते हैं तो किसी पर दृष्टिपात कर दें तो खत्म हो जाएगा, और विष का काम है खत्म करना। चंद्रमा निकला था भगवान के आंख में, चंद्रमा की शीतलता जिस पर भगवान दृष्टि चंद्रमा की शीतलता से करे उसका जीवन शांत हो जाएगा। जिसको धन चाहिए भगवान के पास आए, भगवान दृष्टिपात करेंगे उसे धन मिल सकता है। हम लोग इस बात को जानते हैं, जब खूब दुखी रहते हैं संसार में, कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है, किसी का कोई निदान नहीं है, या सब कुछ लॉस्ट कर चुके हैं, जल रहे हैं, तप्त हो रहे हैं, तो शीतलता के लिए भगवान के पास आते हैं। आप लोग देखना, जब वह जलन होती है तो जलन का जो आंसू होता है वो गर्म होता है, और जब भगवान शीतलता प्रदान कर देते हैं, भगवान का दर्शन करने के बाद यदि कोई रोने लगता है तो वही आंसू शीतल हो जाता है, क्योंकि भगवान का दृष्टिपात उस व्यक्ति पर हुआ है। अंबुज क्षण, मुझे याद है 84-85 एक सरदार जी थे हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर, मैं उन दिनों भक्त लोग सब सफाई करते थे सब कुछ, तो मैं आया था किसी कारण से, मैं मंदिर ऑफिस नीचे आ गया था या क्लास के तुरंत, वहां क्लास के तुरंत बाद ही था। एक आदमी अंधा था, वो दर्शन, मैं पहले कहा भी था, वो दर्शन करने आया था और दर्शन करके जा रहा था, और जहां पर वो अर्जुन और कृष्ण का उपदेश है अभी, तो वहां पर वो बना दिया है स्टेप्स, वहां पहले बुक स्टॉल था वहां पर, तो जाने का रास्ता यही था, एक छोटा वाला जगह इधर वाला, एक ही बाहर निकलने का था। तो एक अंधा आदमी था, वो डेली आता दर्शन करने के लिए, कुछ लोग डेली दर्शन करने वालों में से थे, उसमें से एक अंधा भी था। एक तो थे एक घोड़ा, घोड़ा वाला जो सिद्धार्थ प्रभु को बासमती राइस लेकर आते थे बड़े बाबा, वो थे, ऐसे कई एक लोग थे। एनीवे वो अंधा आता था। एक कोई नया आदमी आया, पहले बार शायद आया होगा मंदिर में, नया ऑफिस खोला होगा या लॉटरी लगी होगी, जो भी है, उसको जल्दीबाजी था, आया और प्रणाम करके जल्दी जल्दी जा रहा था, दर्शन कर करके जा रहा था। सरदार जी वहीं पर थे और अंधा व्यक्ति जा रहा था, उसमें ठेस लग गया, धक्का लग गया। तो अंधा व्यक्ति जल्दीबाजी में थे, धक्का लग गया, तो कौन डांटने लगा, तुम देख नहीं रहे हो क्या, देख नहीं सकते हो क्या? तो उसने कहा, नहीं सर मैं देख नहीं सकता हूं। कहा, क्या तुम अंधे हो? कहा, मैं अंधा हूं। तो तुम अंधा है तो मंदिर में क्यों आता है? वहां तुम देख नहीं सकते, अंधेर में क्या आता है? सरदार जी सुन रहे थे कि सरदार जी अंधे का जानते थे कि दिल्ली आता था। तो अंधा ने इतना सुंदर उत्तर दिया, कहा कि चाहे मैं देखूं या ना देखूं, भगवान तो देखते हैं ना, मैं अपने को भगवान को देखा नहीं आता हूं, बस इतना ही कहा। तो सरदार जी ने पूछा, क्या वो आदमी कह रहा था? तो सरदार जी ने पूरा बात हमको बताया। तो कितना सही सिद्धांत बताया उसने, हम क्या भगवान को देख सकते हैं? अरे भगवान के सामने खड़ा हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। जैसे जाड़ा का दिन है, सूर्य के रोशनी के सामने खड़ा हो जाओ, कल्याण हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, गरम गरम ऊपर से हीटेड रेज आ रहे हैं, कल्याण हो जाएगा। वैसे ही भगवान के सामने आ जाओ, भगवान के दृष्टि का रेज जब पड़ेगा तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। अंबुज क्षण, वही बात यहां पर कहा गया है, शरद अम्बृह इक्षणम, शरद कालीन कमल, शरद काल में आकाश स्वच्छ होते हैं, तालाब के जल स्वच्छ होते हैं, भागवतम में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है, और उस समय का जो धूप होता है वो भी अच्छा होता है, आकाश में कोई पोल्यूशन नहीं होता है, तो वह कमल बहुत सुंदर। और आई थिंक इसका इंग्लिश वाला में उसका फोटो भी दिया गया है कि भगवान का आंख थोड़ा धीमे है, मतलब कि ऐसे नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है, और भगवान देवताओं को फोटो भी निकाल दिए हैं बहुत ब्यूटी वाले। वो फोटो था यहां, भगवान खड़े थे, देवता लोग थे। एनीवे, तो भगवान का ये जो दृष्टि है यहां पर, शरद अम्बुरह इच्छणम, एक आचार्य कहते हैं कि ये दृष्टि कृपा दृष्टि है। तो भगवान देवताओं पर कृपा करने के लिए आए थे। भगवान हमेशा कृपा करते हैं, लेकिन विशेष भाव से देवताओं पर कृपा करने के लिए यहां पर आए थे। तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए थे और विभिन्न प्रकार के सेवक उनका सेवा कर रहे थे। शरद ऋतु के कमल के समान उनका सॉफ्ट दृष्टि था। अब भगवान के सौंदर्य को देख करके दृष्टवा तम अमनौ सर्वे इच्छा आह्लाद बिहवला। भगवान बड़े प्रसन्न चित्त से थे, भगवान के मुख से भगवान मुस्कुरा रहे थे और भगवान के इस स्वरूप को देख करके देवता लोग भी आह्लादित हुए भगवान को देख करके। और पृथ्वी पर वहीं पर अवनौ मतलब पृथ्वी पर दंडवत पतिता। आजकल हम लोग बोल मैं भी बोलता हूं दंडवत प्रभु, दंडवत संप्रदाय हो गया। पहले दंडवत नहीं था, पहले हरे कृष्ण था। अब साथ में रहते संघ का रंग चढ़ जाता है, हम लोग भी दंडवत बोल लेते हैं। शॉर्टकट है, पहले दंडवत नहीं बोलते थे, हरे कृष्ण ही तो प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ऑब्लिगेशंस। ये सोचने की बात है कोई हरे कृष्ण बोलते हुए मर भी जाएगा तो कल्याण होगा और दंडवत बोलकर मर गया तो कहां जाएगा, कोई दंडवत लोग तो है ही नहीं अभी तक। पता नहीं कब सुधार होगा, लेकिन इस कान में एक वायरस हो गया है दंडवत। दंडवत कहना नहीं चाहिए, करना चाहिए। दंडवत करने का काम है, कहने का काम नहीं है। यहां पर बताया दृष्टवा तम अमनौ दंडवत पतिता। भगवान को देख करके पृथ्वी पर दंडवत दंडा के समान पतिता, दंडवत कहकर करके ही छोड़ नहीं दे सकते। गोस्वामी जानते थे कि इतना आधा कहूंगा तो इस कान वाले पकड़ लेंगे पहले। इधर कहते पतिता गिरे, दंडा के समान गिर पड़े। तो दंडवत करने का मतलब दंडा के समान गिर पड़ना। राजन यहां पर परीक्षित महाराज घोषित कर रहे हैं कि सभी नागरिकों को क्या करना चाहिए। आप राजा हो, सिखाओ लोगों को, बताओ लोगों में। शासन ऐसा होना चाहिए कि भगवान को जब देखें तो भगवान को दंडवत करना चाहिए। सष्टांग दंडवत, अष्टांग दंडवत, दंडवत जरूर करें। सष्टांग दंडवत है मोस्टली, दंडवत करनी चाहिए भगवान को। जब भी मंदिर खुले तुरंत सष्टांग दंडवत, ना कि खड़ा रहे तो पत्थर के समान। कृतांजलि हाथ जोड़ करके वो भी ठीक है, लेकिन दंडवत यहां पर आया हुआ है। दंडवत पतिता राजन। और उसके बाद तो जब भगवान का दर्शन किए तो दंडवत किए और उसके बाद उठ करके शनै उत्थाय, धीरे धीरे उठ करके तुष्टभू भगवान का प्रार्थना किए। हम लोग दंडवत करते उस समय प्रार्थना कर लेते हैं, दंडवत करें बाद में उठे बाद में प्रार्थना करें। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जो भी प्रार्थना करना है वो उठ करके हम शॉर्टकट करते हैं, दंडवत करते हैं सब कुछ। कितने भक्त देखते हैं कि 5-7 मिनट तक दंडवत करते रहते हैं, सब गीता का श्लोक बोल डालेंगे, पूरा भागवतम का जो श्लोक याद किए थे बोल डालेंगे। और नहीं तो कितने 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं नहीं कह रहा हूं कि सही है कि गलत है, लेकिन यहां पर देवता लोग क्या किए वो बात बता रहा हूं कि वे लोग दंडवत किए और उठ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना किए, सुंदर सुंदर श्लोक में स्तुति किए। और वो प्रार्थना क्या है वो कल से बतलाया जाएगा। तो आज जो तीन श्लोक है, इस तीन श्लोकों में यही वर्णन किया गया है। एक तो जब वे लोग हृदय में स्थित भगवान जो परमात्मा है उन पर ध्यान कर करके और भगवान का गुणानुवाद किए, स्तुति किए, तो भगवान उनके स्तुतियों से प्रसन्न होकर के उनके हृदय में ही अवतरित हुए। हमें भगवान हैं ही सबके हृदय में, हृदयसु अर्जुन तिष्ठति अहम आत्मा गुड़ाकेश हृदयसु अर्जुन तिष्ठति, जहां आत्मा होता है भगवान वहां पर साथ में रहते हैं। और बाद में वही भगवान बाहर आए जो कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। और वे भगवान अकेले नहीं आए, उनके साथ में षोडश सोलह के सोलह उनके पार्षद आए जो देखने में भगवान के हूबहू वैसे ही थे जैसे भगवान थे, लेकिन अंतर इतना ही था कि भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह था, श्रीवस्त्र चिन्ह और कौस्तुभ मणि, जो कि भगवान और उनके पार्षदों में भेद बतला रहा था। भगवान का पार्षद लोग भगवान के सेवा में लगे हुए थे, सेवा कर रहे थे, और भगवान की दृष्टि जो थी कृपामयी दृष्टि थी। भगवान देवताओं पर कृपा करने के लिए आए थे, संतावनामयी दृष्टि कह सकते हैं। देवता लोग बड़े दुखी हो गए थे, तो दुखी होने पर संतावना देनी चाहिए है? किसी कोई मर गया है तो जाकर के थोड़ा संतावना दे, बाद में बात करें थोड़ा, तो संतावनामयी। तो वैसे ही देवताओं पर कृपा करने भगवान आए थे, तो कृपामयी दृष्टि यहां पर आया हुआ है शब्द। शरद अंबुर इक्षणम है, शरद कालीन उन्निद, आधा खुला हुआ और आधा बंद आंख था भगवान का, शरद कालीन कमल के समान भगवान का आंख था, यह कृपामयी दृष्टि था। इसको देख करके देवतागण भगवान के स्वरूप को, सौंदर्य को देख करके, उनकी कृपा को देख करके विह्वल हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान भी प्रसन्न थे उन लोगों को देख करके, और भक्त ही प्रसन्न थे। भक्ति वह साधन है जो दोनों को प्रसन्न करता है, भगवान को भी प्रसन्न करता है और भक्त को भी प्रसन्न करता है। यदि कोई भजन करे, अच्छा तरह से भजन करता है सिंसियरली, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो स्वाभाविक है कि वह प्रसन्न होगा। यदि कोई प्रसन्न नहीं है भक्ति में, तो समझना चाहिए सिंपल चीज है, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो भक्ति है वो शुद्ध नहीं हो रही है, उसमें कुछ टिंज है, उसमें कुछ न कुछ मिलावट है। इसलिए मैं तो जितना मात्रा में मिलावट रहेगा उतना मात्रा में हम अप्रसन्न रहेंगे, और 100% जितना शुद्ध रहेगा उतना प्रसन्न रहेंगे। यदि 100% शुद्ध है तो 100% कृष्ण के दास बिंदास, फिर कोई चिंता नहीं है। जहां भी जाओ, कोई सुख हो चाहे दुख हो, मान हो अपमान हो, सब परिस्थितियों में आनंद ही आनंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही रहेगा। तो इस प्रकार से देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए भगवान को देखकर, और भगवान भी उनको देखकर के प्रसन्न हुए। और क्या किए देवता लोग भगवान को देखकर? प्रसन्न तो हुए, ठीक है कि थैंक यू भगवान आप आ गए हैं, लेकिन उतना ही से काम नहीं चल सका, तो वो लोग दंडवत प्रणाम किए। एडिकेट कभी नहीं भूलनी चाहिए, भगवान के सामने आए, वैष्णव के सामने जाए, एडिकेट हमेशा याद रखना चाहिए। एडिकेट या आचरण जो है, एडिकेट का हिंदी क्या होगा? दो चीज हो रहा है, शिष्टाचार। शिष्टाचार से शिष्ट आचार, यदि शिष्टाचार श्रेष्ठ आचार, इसे आचरण शुद्ध होता है, और आचरण की शुद्धि से बहुत कुछ शुद्ध होता है, वातावरण बहुत शुद्ध होता है। तो आचरण शुद्ध करने के लिए शिष्टाचार बहुत जरूरी है। एडिकेट नहीं भूलने चाहिए। हम देखते हैं कि भक्त लोग कुछ एडिकेट भूलते जा रहे हैं। याद करना चाहिए, उसे हमेशा कंठ में कंठहार के रूप में रखना चाहिए। एडिकेट को हमें क्या ट्रेनिंग दी गई थी, क्या शिक्षा दी गई थी। ये जो ट्रेनिंग होता है भक्त प्रोग्राम का ट्रेनिंग, ऐसा कि नहीं जब तक पीला कपड़ा पहने तब तक के लिए ट्रेनिंग है, उसके बाद में तो उजला कपड़ा पहन लिया किसी को प्रणाम करने गया, और लाल पहन लिया तो परमहंस हो गया। इसके लिए नहीं है। जैसे कहते हैं कि अरे स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है तो कल पढ़ने परीक्षा पास करने के लिए, बाद में थोड़े वो काम आता है, ऐसे ही कहते हैं लोग ना। बच्चों से पूछा, हाँ यदि आप डिबेट कराओ आज कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाइयां कितनी काम आती है, तो सब कहेंगे अरे वो तो परीक्षा पास करने के लिए होती है। तो वैसे ही हम लोग ना सोचे कि दीक्षा देने, दीक्षा के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। दीक्षा के बाद तो परमहंस होगा, फिर कोई तो होते नहीं। एबीसीडी है, एडिकेट जो है एबीसीडी है। जैसे जो एबीसीडी है, आप कितना भी पढ़ाई करो उसमें एबीसीडी जरूर रहेगा, कितना भी पढ़ाई करो एबीसीडी रहेगा। तो कितना भी ऊंचा से ऊंचा भक्त बन जाओ, ये वैष्णव एडिकेट हमेशा रहेगा, इसे भूलना नहीं चाहिए। देवता लोग श्रेष्ठ हैं, सत्गुण प्रधान हैं, वे लोग एडिकेट सिखा रहे हैं। हम लोग बहुत फैमिलियर हो जाते हैं कभी कभी सीनियर भक्त लोग हैं। मैं कहूंगा कि हमारा जो असिस्टेंट विष्णु है, पता नहीं है कि सो रहा है, मैं इसको अपने मित्र के समान रखता हूं, लेकिन अपना एडिकेट कभी नहीं भूलता है। विष्णु अपना एडिकेट हमेशा वाहन करता है। एडिकेट से आचरण शुद्ध होता है, शिष्टाचार से आचरण शुद्ध होगा, और जिसके पास आचरण है सब लोग उसका सम्मान करेंगे। कौन कितना प्रवचन कर लेता है, कौन कितना कलेक्शन करता है, उससे कोई नहीं, किसका आचरण शुद्ध है। आचरण शुद्धि, खैर आजकल जमाना बदल गया है। हम लोग पहले सुने थे कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धर्म नहीं रह गया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म खत्म हो गया है, धर्म निरपेक्ष है, सब कुछ सब खिचड़ी हो गया है। तो अर्थ शुरू हो रहा है, सेकेंड गियर से गाड़ी चलती है। तो हम लोगों को वैष्णव समाज में वैसा नहीं होना चाहिए। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। पहला शिष्टाचार तो है कि जो सोसाइटी के आचार्य हैं उनका सम्मान करें। प्रभुपाद जी अपने हाथों से लिखे हैं और प्रभुपाद जी साइन किए हैं कि ऑल डिवोटीज कनेक्टेड टू इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मस्ट अटेन मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम, मस्ट फॉलो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, मस्ट चांट मिनिमम ऑफ 16 राउंड, मस्ट रीड द बुक्स सच एज भगवत गीता, भागवतम नेक्टर एक्सेट्रा। तो प्रभुपाद जी जो हाथ से लिखकर साइन किए हैं अपने भक्तों के लिए, कम से कम उतना तो हम पालन करें। ये मस्ट में है। एनीवे, तो शिष्टाचार पालन करना चाहिए। जब शिष्टाचार, इस पूरे आज का जो श्लोक है इसमें शिष्टाचार का बड़ा ही महत्वता है। दंडवत पतिता अवनौ दंडवत पतिताम, पृथ्वी पर सष्टांग दंडवत प्रणाम किए हुए लोग, और बाद में उठकर करके यहां पर राजन कहते हैं महाराज। राजा काम है देखना कि सब लोग नियम कानून, प्रेसिडेंट का काम है देखना कि सब नियम कानून लोग पालन करें, सब लोग मंगला आरती में आए, सब लोग क्लास गुरु पूजा आए, सब संध्या आरती आए, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का काम है और टेम्पल कमांडर का, जॉइंट सेक्रेटरी का काम है, सब लोगों का काम है। जो मैनेजमेंट के पोस्ट पर है, जो डिपार्टमेंट हेड है, उसका एक काम है देखना कि उसके अधीनस्थ जितने भक्त लोग हैं सब पालन करें, यहां तक कि एडिकेट भी। इसलिए राजन, राजन सब परिचित महाराज राजा थे, हालांकि अब संन्यास ले लिए थे, कथा सुन रहे थे, लेकिन फिर भी राजा थे, हैंड ओवर नहीं किए थे, राजा थे राजन। और उठ करके देवता लोग भगवान का स्तुति किए, धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो समझ में आ गया तीनों श्लोक ना, सिंपल है, देवताओं के प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर के उनके हृदय में प्रकट हुए, बाद में बाहर आए, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और बाद में देवता लोग भगवान को देखकर विह्वल हुए, प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम किए और गुणगान किए भगवान का, बस चार चीज। धन्यवाद, हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराशि भागो, कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण। रवि जी, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह, ये सुनेली रोमावली और भ्रुव का पद चिन्ह है, सुनेली रोमावली है ना, और भ्रुव का पद चिन्ह है, तो भगवान की वक्षस्थल का किस किस तरफ है ये दोनों?
क्या
भगवान की वक्षस्थल पे सुनेली रमावली है ना, और भृगु मुनि का चरण चिन्ह है, तो श्रीवत चिन्ह किसको कहते हैं?
चरण चिन्ह को, चरण चिन्ह श्रीवत्स लक्ष्य बताएगा, श्रीवत्स लक्ष्य वहां श्रीवत्स का, श्रीवत्स किसे कहते हैं मैं बतलाया, वल्लभाचार्य के अनुसार यह है श्रीवत्स भृगु मुनि को, श्री जस्य वत्सा इति श्रीवत्स, श्री जिसकी पुत्री हो यानी भृगु मुनि, और भृगु मुनि अपना पैर रखे थे, तो बाल तो था ही, अब सोने का बाल था, भगवान का सोने के समान था ना, कि सोने का, सोने के समान ना है, तो भगवान पीताम्बर धारण करते हैं सोने के समान, तो बाल तो था ही, बाल दब गया, बखड़ा हो गया होगा और क्या, लेकिन चिन्ह रह गया उनके वक्षस्थल पर। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न में समझा नहीं।
तो ये दो चिन्ह सुने हैं, सुनेली रोमावली और भृगु का,
सोने का मार्बल,
सोने की
रोमावली, रोमावली, अच्छा, मतलब कि जो बाल, बाल जो है सोने के समान था ये ना, अब पता नहीं भगवान के शरीर में सोना था, सोना भी तो क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ तो है नहीं, सोने के समान था। आकार वैसा है, ठीक है, कोई आपत्ति तो नहीं है ना,
मैं पूछ रहा हूं प्रभु जी।
एक आ रहा है कि दो चिन्ह है, भृगु के चरण चिन्ह और स्वर्ण रोमावली श्रीवत्स चिन्ह, दो चीज है,
तो ये तो यह बताया गया है ना, तो बताया गया है कि दो है, एक चिन्ह है और एक कौस्तुभ मणि। अब कौस्तुभ मणि रोमावली पता नहीं, हाँ अलग है, पता नहीं, मैं तो उस समय देखा था वल्लभाचार्य का कमेंट्री था, तो श्रीवास तो उसी को कहते हैं ना, भृगु के चरण चिन्ह को श्रीवास कहते हैं, वल्लभाचार्य ने इसको एक कहा था, पूरा व्याख्या दिया, श्री जस्य वत्सा इति श्रीवास, यस, अच्छा ऐसा संग हो रहा है बिल्कुल, आए?
श्रीवत्स का चिन्ह था या नहीं
मुझे मालूम नहीं है,
भृगु मुनि भगवान को लात मारे थे वक्षस्थल में, उसके पहले भगवान,
मैं प्रश्न आपका समझ गया, लेकिन मैं कहा कि मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम तो बताओ, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, तो डिटेल भगवान के श्रृंगार का है, अब पीताम्बर पहनते थे, पीताम्बर कैसा था, कितना पीला था, कितना परसेंटेज था, वो सब जानने के लिए क्या फायदा, हाँ यदि इसमें लेकिन का नाम ठीक है कि भृगु के पहले पितामर था सॉरी शिवस था कि नहीं चिन्ह भृगु का चरण चिन्ह किसी को मालूम है गौर कृष्ण जी बताइए पंडित आप ही हो ना
हरे कृष्ण
जब समुद्र मंथन के बाद स्वयंवर में लक्ष्मी उनको स्वीकार की तो भगवान वहां भागवत में वर्णन है श्री भगवान अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी के लिए स्थान दिए तो वो जो स्थान है वो श्री वत्स है जहां लक्ष्मी निवास करती हैं और भृगु जी ने भी उसी वक्षस्थल पर चरण मारा लक्ष्मी जी को बुरा लगा
चली गई वहां से क्या
नहीं चली नहीं गई लेकिन वो दोनों एक ही स्थान कहते हैं जो स्वर्ण रोमावली के रूप में है
तो दोनों ठीक है
और भगवान का श्रीवत्स लक्ष्मी का निवास ये समुद्र मंथन के बाद ही लक्ष्मी उनकी पत्नी नहीं बनी वो नित्य प्रिया है
लेकिन अब वही हुआ कि पेड़ पहले आया कि गुठली पहले आया
तो श्रीवत्स चिन्ह तो लक्ष्मी का निवास स्थान तो भगवान का शाश्वत चिन्ह है और उस समय भृगु जी के बाद वो स्पष्ट हो गया कि उसी स्थान पर भृगु जी भी चरण मारे थे तो दोनों एक ही है अलग अलग नहीं है हरे कृष्ण
तो इनका कहना नाम है कि ये इटर्नल है जब से भगवान है अब मत पूछो कि भगवान कब से हैं उसका उत्तर नहीं और कोई प्रश्न
भृगु के चरणों की व्याख्या करने के लिए भृगु की लड़की श्री का जिक्र आ रहा है क्या उनकी लड़की श्री जो थी क्या भृगु के चरणों से सर्वोपरि उसे ऊपर उठ के थी क्या
कहते हैं कि भृगु जी का वर्णन करने के लिए
उनकी लड़की
मैं कहना कि बलवाजा कहते हैं श्री जस्य वस्ता इति त्रिवस्य भृगु का चरण चिन्ह न कह करके वहां पर श्रीवस कहा गया है क्योंकि श्री नाम की उनकी एक पुत्री थी तो ये कह रहे हैं कि भृगु के से बढ़ करके क्या श्री जी हैं क्या उनकी पुत्री क्या उत्तर है इसका
माता पिता तो कोई बन सकता है इसका अर्थ कि भगवान से बढ़कर दशरथ जी नहीं है नंद बाबा नहीं है या भृगु जी या समुद्र लक्ष्मी के पिता बनकर लक्ष्मी से बड़ा नहीं हो गए उनके कृपा से उनकी पुत्री बन गई या भगवान किसी को पिता स्वीकार कर लें तो लक्ष्मी तो बड़ी है ही भगवान और लक्ष्मी से बढ़कर कोई नहीं है अब कृपा पूर्वक किसी को बाप स्वीकार कर लें किसी को माँ स्वीकार कर लें उनकी कृपा है और भक्तों को ही माँ पिता के रूप में स्वीकार कर
अरे कभी कभी बेटा जब बड़ा बन जाता है ना तो बाप का नाम बढ़ जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी है? बाप का नाम बढ़ जाता है बेटा के बड़ा होने से तो श्री जी बड़ी हैं इसलिए
और इस दंडवत पतिता पर थोड़ा मैं कहना चाहता हूं दंडवत का सीधा अर्थ डंडा की तरह खड़ा रहना भी है पतिता का कर इस संदेह को दूर कर दिए सुखदेव
ना
गिरना चाहिए डंडा जैसा खड़ा नहीं रहना चाहिए पतित हो जाना चाहिए
तो मैं बताया ना
और खड़ा खड़ा केवल भगवान के सामने रहेंगे उसको भी दंडवत कहा जाएगा डंडा खड़ा भी रहता है लेकिन यहाँ पतिता का महत्व है गिरना चाहिए दंडवत खड़ा रहेंगे तो उदंड कहा जाएगा हरे कृष्ण
हाँ गुड पॉइंट और जो हाँ जो दंडवत प्रभु हो क्या होगा वो फोन पर बोलते दंडवत प्रभु ओ कौन दंडवत है
महाराज श्री इसका विरोध करते हैं फोन पर है जैसे दंडवत नहीं कहना चाहिए ये उदंडता है
लेकिन सब लोग करते हैं आप भी करते हो मैं भी करता हूं
और दूसरी बात उसका अपने भाव को शब्दों में व्यक्त करने का भी दोनों अर्थ है अपने विनम्रता को दैन्यता को व्यक्त करने की शब्दावली तो वही है दंडवत
ना, 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 ना,
ना। ये भी शिष्टाचार है
ना 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 ये शिष्टाचार चुप पॉकेट में रखो ये शिष्टाचार ठीक
नहीं सामने है तो प्रैक्टिकल नहीं है तो सब
अरे और कुछ नहीं है तो हरे कृष्ण बोलो सबके मन भगवान के मन
दोनों कहा जाता है हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी
ना 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 नो न्यू टेक्नोलॉजी प्रभुपाद नहीं सिखाए प्रभुपाद के प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ऑब्लिगेशन।
बुरा नहीं है, जय श्री राधे, दंडवत।
ना ना ना, ये सब जस्टिफाई ना करें।
कोई बड़े आदमी हरे कृष्ण, कोई वरिष्ठ भक्त फोन करेगा, हरे रास, मैं बोले हरे कृष्ण, ठीक है ना, हरे कृष्ण प्रणाम बोलना चाहिए ना, नमस्कार बोलना चाहिए, दोनों बोलना चाहिए।
प्रणाम बोल सकते हो, नमस्ते बोल सकते हो, लेकिन प्रभुपाद जी हम लोगों को नियम दिए हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ऑब्लिगेशन।
हाँ, तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया ना,
तो हिंदी में कहो कृपया आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।
शिष्टाचार में कहते हैं प्रभु जी विनित दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए, हमारी नम्रता के साथ मैं दंडवत करता हूँ। पत्र पर लिखते हैं तो विनित दंडवत प्रणाम, नम्रता पूर्वक प्रणाम करें, शब्द से प्रणाम करते हैं, ये भी शिष्टाचार है।
वाणी से सेवा करना ठीक है, लेकिन अपना प्रैक्टिकल करे तो और अच्छा होगा। तो हरे कृष्ण बोल दो, सिंपल चीज।
नहीं, दूर से किया जा सकता है, सामने वैसे कहकर नहीं काम चल सकता है, सामने करना पड़ेगा।
एनीवे वी शुड डू, हम लोगों को अपना कंकक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे करने योग है वो प्रभुपाद जी ने किया है, कहा है करने के लिए, उतना करें, एनफ है। इस्कान का भगत होने का मतलब तो अंग्रेजी जानना ही चाहिए, तो क्या तकलीफ है। जय धोनी भी आज भी अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑल ग्लोरी, ये कोई हम उसके विरुद्ध नहीं है, पर प्रभुपाद जी सिखाए हैं, दैट वी शुड फॉलो, प्रभुपाद जी बताए हैं फॉलो करना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, तो एक प्रश्न का, आपको प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा तो प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, जैसे जवानी के दिनों में बचपन में देखा करते थे क्रिकेट मैच, तो आकोते का हाल बताता था, उस रेडियो के अंदर आकोते का हाल बताता था, उसके इर्द गिर्द सब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। उसने क्रिकेट मैच नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, कौन बल्लेबाज है, कौन बाल फेंक रहा है, कुछ नहीं देखा। ऐसे ही भागवत से कमेंट्री करने वाले से ये पता लगता है भगवान है, लीलाएं हो रही है, जबकि हम देख नहीं रहे, लेकिन सुनने से हमें पता लगता है ये सब लीलाएं भगवान की हो रही है, भगवान को हम देख रहे हैं।
बिल्कुल, नित्य लीला हो रही है।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद क्लास के लिए,
फिर धन्यवाद।
प्रभु आपने जैसे कहा कि देवताओं ने कैसे भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया, तो जैसे भगवान के अल्टर खुलते हैं तो हमको पहले क्या करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, मतलब शास्त्र में कहा गया नीचे
दर्शन करते ही प्रणाम करो, देखते ही प्रणाम करो, दर्शन के प्रणाम
करनी चाहिए भगवान की,
यहां तो बताया खड़ा होकर के बाद में, मैं कहा दोनों कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, खड़ा भी, खड़ा होकर के।
तो जब हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं श्री चरणों से, तब स्तुति गानी चाहिए
या
उसके
बाद? प्रणाम करो पहले, बाद में खड़ा हो, फिर दर्शन करो, देखा प्रणाम, खड़ा हुआ, दर्शन करो, स्तुति करो, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग। हनुमान जी, हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, कृतांजलि भी चलेगा, हाँ जोड़ सकते हैं। यदि बीमार है तब ना, यदि बीमार नहीं है तब क्या, एक्सेप्शन मत रखिए, एक्सेप्शन सभी रूल का एक्सेप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक, तो वैसे ही है, ये घर में खिलाने के लिए सब कुछ खिलाइए ना, जब है तो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जब नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ जी,
हरे कृष्णा। तो हम तो सोचते हैं भक्तों के बारे में,
एक सेकंड, एक सेकंड, बाय द वे मैं भी करता हूं, मैं आपके क्लास में ही हूं।
आप तो सोने वाले भक्त के बारे में बोले तो हम इसके कमेंट करते हैं,
मैं भी सो जाता हूं कभी।
जो जो चोर गुंडा होता है ना,
उनको नींद नहीं आती है और इसलिए है
क्या क्या क्या
जो चोर गुंडा होते हैं चोर गुंडा लोग होते हैं ना उनको नींद आते नहीं है और इसलिए आपके प्रवचन में अगर कोई सो भी जाता है बाय चांस तो आप समझ लो वो भी सज्जन है और आपके कृपा के पात्र है
लेकिन आपने सोने वाला आप बड़ा गड़बड़ बोल दिया मैं नहीं बोलूंगा
और एक और प्रश्न है प्रभु जी कभी कभी क्या इंद्र भगवान सो जाते हैं क्या बीच में अभी एक महीना बारिश लेट हो गई है
एनीवे जो क्लास में बताया गया वही प्रश्न करें तो अच्छा होगा नहीं तो सोने के लिए तो आप जानते हो ना कुंभकर्ण मारे गए थे तो निद्रा भगवान राम के पास गई कि अब मैं कहां जाऊंगी अब तो हमारे तो चल दिए भगवान राम ने कहा कि अब क्या करेंगे हम मारे हैं तो जहां मेरी कथा होती तुम वहां पहुंच जाना जहां कथा होती वहां पहुंच जाती निद्रा ऑलराइट ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय